ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं प्रपितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया याति स्वप्रदन्तकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सो आज हमारे कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति आज है। मकर संक्रांति बड़ा पूरे भारत में बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। यद्यपि गुजरात में लोग उसको उत्तरायण के रूप में मनाते हैं और कई अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार के उत्सव होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु पितामह उत्तरायण तक का वेट किया था, उसके बाद फिर उन्होंने शरीर छोड़ा था। लेकिन उत्तरायण शब्द का एक दूसरा अर्थ भी होता है। उत्तरायण शब्द का अर्थ होता है कि जिन्होंने उत्तरा माता उत्तरा उनके गर्भ में प्रवेश करके जिन्होंने परीक्षित की रक्षा की थी वो कृष्ण उत्तरायण। उत्तरायण और उत्तरा की रक्षा शायद इसी दिन हुई थी, वो आई एम नॉट श्योर बट आई कैन चेक। उत्तरायण उत्तरा के गर्भ में कृष्ण ने जाकर के परीक्षित की रक्षा की थी, इसलिए उत्तरायण नाम पड़ा। और वो कृष्ण का एक्चुअली कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे भीष्म पितामह अपने अंत समय में, इसलिए उन्होंने वेट किया। उत्तरायण का वेट नहीं किया था, कृष्ण का वेट किया था। लेकिन उत्तरायण के टाइम पे ही मकर संक्रांति के टाइम पे हुआ होगा। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने शरीर त्याग किया था आज के दिन, एक्चुअली उन्होंने शरीर तो भीष्म सप्तमी के दिन त्याग किया था। वो तो अभी आएगा भीष्म सप्तमी। और चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग उत्सव जुड़े हुए हैं इस तिथि के आसपास। और आज के दिन गोपाल भट्ट के उत्सव में का आविर्भाव दिवस है। छह गोस्वामी जो है वो वैष्णव विशेष करके गौड़िया वैष्णव परंपरा के आधार स्तंभ है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को अगर कोई भक्त पूर्ण रूप से आत्मसात करना चाहता है तो उनको छह गोस्वामियों की कृपा की आवश्यकता है। छह गोस्वामी की कृपा के बिना उनको पंच तत्व भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसे तो पंच तत्व बड़े कृपालु है, दयालु है, लेकिन उनके सबसे प्रिय भक्तों में से छह गोस्वामी है। कई बार हमारे भक्त लोग छह गोस्वामियों के नाम भी नहीं पता। इतना पता है कि वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इतना पता है, लेकिन आगे सबका नाम अगर पूछा जाए तो कई बार गलती कर देते हैं कौन से छह गोस्वामी है। आई बिलीव कि आप लोग तो याद रखते हो छह गोस्वामी कौन कौन से है। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये छह गोस्वामी है। वंदे रूप सनातन रघुजुगव, रघुजुगव का डबल रघुनाथ है, रघुनाथ दास है, रघुनाथ भट्ट, तो रघुजुगव दो रघुनाथ है। और श्री जीव गोपाल कौ जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। रूप सनातन के विषय में तो आप जानते हो कि दो भाई थे प्राचीन काल में, जो कि चैतन्य महाप्रभु के बड़े अंगद पार्षद थे, और वो हुसैन शाह राजा जो थे उसके प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे। सो रूप सनातन रघुनाथ भट्ट रूप सनातन का भतीजा था जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। वो बंगाल के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, हिरण्य मजमुदार, गोवर्धन मजमुदार, और गोपाल भट्ट गोस्वामी साउथ इंडिया में श्रीरंगा क्षेत्र, जहां पर वेंकट भट्ट नाम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे, उनके बेटे थे। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो रंग क्षेत्र में मंदिर में प्रवेश किए। बहुत सुंदर बड़ा विशाल मंदिर है और निरंतर वैदिक मंत्रोच्चार चलते रहते हैं उस मंदिर के भीतर। वातावरण बड़ा पवित्र होता है, अगर आप कभी जाओगे तो उसकी मंत्रों की ध्वनि इतने सुंदर ढंग से गाते हैं, निरंतर चलती रहती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। वातावरण बड़ा सुंदर पवित्र वातावरण होता है। और वहां पर चैतन्य महाप्रभु जब प्रवेश किया और उन्होंने तुरंत नर्तन कीर्तन वहां पर मंदिर में किया, तो उनको देख करके सारे ब्राह्मण चौंक गए। सबको लगा कि शायद ये कोई देवता आ गया है हमारे मंदिर के अंदर, और ऐसा स्वरूप तो आज तक कभी देखा नहीं था, इतना सुंदर। तो वेंकट भट्ट वहां के पुजारी थे, ब्राह्मण थे। वेंकट भट्ट ने देखा तो वेंकट भट्ट का शरीर रोमांचित हो गया, और उन्होंने सभी लोगों की भीड़ को हटा करके चैतन्य महाप्रभु से सबको दूर ले गए वो, ताकि महाप्रभु अच्छे से कीर्तन कर पाए। और फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण की रज अपने सिर पर ले ली, तो चैतन्य महाप्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ कि कोई व्यक्ति यहाँ पर मेरा आशीर्वाद लेना चाहता है। चैतन्य महाप्रभु उसको रिप्लाई दिया, कृष्णा कृष्णा। लेकिन बाद में वेंकट भट्ट ने उनको आमंत्रण किया, आप हमारे घर पे रहिए, चतुर्मास शुरू हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके वेंकट भट्ट के घर में 4 महीना रहे। अभी भी वो घर है जहां पर चैतन्य महाप्रभु 4 महीने रुके थे, अभी भी है वो जगह, वेंकट भट्ट का घर है अभी भी। और 4 महीना तक उनके अतिथि के रूप में रहे उनके घर में, उनका भोजन लिया, उनकी सेवाएं ली, उन पर कृपा किया, और कई सारी लीलाएं आसपास में की महाप्रभु ने। रोज हरिनाम होता था। और एक बार वेंकट भट्ट ने पूछा कि तुम ये कृष्ण कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट के बीच में ये वार्तालाप हुआ कि लक्ष्मी नारायण जो है वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं श्री संप्रदाय में, तो राधा कृष्ण को इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है श्री संप्रदाय में। वो लोग मानते हैं कि राधा कृष्ण बाद में है, लक्ष्मी नारायण मूल स्वरूप है, वो ऐसा मानते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो मत था वो इससे अलग होता था। तो उन दोनों में आपस में चर्चा हुई, तो वेंकट भट्ट ये मानने को तैयार नहीं थे शुरुआत में तो, कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उनसे चर्चा की, तो धीरे 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 महाप्रभु का एक्चुअली महाप्रभु की कृपा के बिना ये संभव नहीं था। आज अगर आप किसी श्री संप्रदाय के किसी प्रसिद्ध ब्राह्मण के पास जाकर के उनके साथ अगर चर्चा करेंगे तो आपके कोई सुनेगा नहीं। और वास्तव में इस प्रकार की चर्चा महाप्रभु कर सकते हैं, प्रभुपाद कर सकते हैं। हम लोग इस बात को कहेंगे तो शायद हमारा विश्वास कोई करे ना करे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई वेंकट भट्ट के ऊपर, वेंकट भट्ट कुंभ कहा चैतन्य महाप्रभु की, अगर लक्ष्मी देवी सबसे महान है तो रासलीला में उनको प्रवेश क्यों प्राप्त नहीं हुआ। और बहुत सारे ऐसे विषयों पर चर्चा किया। ये वेंकट भट्ट का 8 साल का बच्चा था जिसका नाम था गोपाल। चैतन्य महाप्रभु रोज उस गोपाल को अपने गोद में बिठाते थे। रोज वो आता था महाप्रभु के पास। महाप्रभु उसके साथ सन्यासी थे लेकिन उसको प्यार करते थे, कभी गोद में बिठाते थे। फिर जब महाप्रभु उसको भोजन लेते थे तो भोजन खत्म होने पर वापस गोपाल को बुलाते थे और फिर अपनी प्लेट में जो कुछ था सब गोपाल को दे देते थे। 8 साल का बच्चा था और वो गोपाल को महाप्रभु जब वो चार मास खत्म हुए तो महाप्रभु जब जाने के लिए तैयार थे तो सब लोग के घर में जैसे महान पहाड़ टूट पड़ा हो कि 4 महीने के बाद महाप्रभु जा रहे हैं, तो सब भी कोई सहन नहीं कर पाया विरह महाप्रभु का। और गोपाल जो 8 साल का बच्चा था वो तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया और बेहोश हो गया उधर ही। उनके चैतन्य महाप्रभु का वो सहन नहीं कर पाया विरह। और बाद में चैतन्य महाप्रभु उन सबकी दशा देख करके कुछ दिन और रुके और महाप्रभु ने कहा कि इन लोग को मैं पहले सबको पहले इससे बाहर निकालूंगा फिर जाऊंगा यहाँ से। फिर चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल को आदेश दिया था कि तुम शास्त्र को अध्ययन करो और तुम बाद में फिर वृंदावन चले जाना। चैतन्य गोपाल के चाचा का नाम था प्रकाश आनंद सरस्वती जो कि सन्यासी थे। उन्होंने जब से चैतन्य महाप्रभु उन पर भी कृपा किया, प्रकाश आनंद नहीं प्रबोधानंद सरस्वती। तो जब प्रबोधानंद सरस्वती ने उनको पूरा सिखाया वैष्णव सिद्धांत वगैरह सब सिखाया गोपाल को और गोपाल फिर बाद में वृंदावन चले गए। चैतन्य महाप्रभु का आदेश था ऐसे। चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन गोस्वामी को यह कहा था कि गोपाल वहां पर आएगा उसका तुम ध्यान रखना। गोपाल भट्ट वेंकट भट्ट का बेटा था गोपाल भट्ट। चैतन्य महाप्रभु ने फिर उनको दिख गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए बात है। रूप सनातन गोस्वामी वहां पर जब गोपाल भट्ट आए उधर तो रूप सनातन ने संदेशा भेजा चैतन्य महाप्रभु को कि गोपाल भट्ट इधर आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक लकड़े का एक छोटा सा आसन, अब क्या बोलते पेरी या बैठने का जो जगह होता है लकड़े का छोटा सा ऐसा एक वुडन प्लैंक जैसा वो दिया और कुछ अपने निजी वस्त्र दिए पूजा के लिए प्रसाद के रूप में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उस वस्त्रों की पूजा निरंतर करते थे और जिस वुडन का जो आसन दिया था वो आसन भी उस पर बैठ करके वो उनके पास 11 शालीग्राम शिला थी उनकी पूजा करते थे वो गोपाल भट्ट। आज भी अगर आप राधा रमन मंदिर में जाते हो तो लकड़ी का जो आसन है अभी भी है और कहा जाता है कि महाप्रभु के जो वस्त्र है जिनकी वो पूजा करते थे वो वस्त्र भी अभी भी है जिसको चैतन्य महाप्रभु जो पहनते थे निजी वस्त्रों के वो अभी भी है राधा रमन मंदिर में। तो ऐसे तो आप सब भक्त जानते हो कि एक दिन एक प्रसिद्ध ब्राह्मण आया था, प्रसिद्ध कथा कि उस ब्राह्मण ने चैतन्य गोपाल भट्ट से इतना प्रभावित हो गया तो उन्होंने कुछ वस्त्र और कुछ श्रृंगार भगवान के दान में दिए। लेकिन गोपाल भट्ट के पास तो शालिग्राम शिला थी, उनके पास कृष्ण के कोई विग्रह नहीं थे, तो सोचने लगे पहला मुझे किस काम में आएगी ये मेरे पास अगर कोई कृष्ण का एक्चुअली कभी कभी जन्माष्टमी वगैरह उत्सव होता था तभी भी उनको मन में होता था ऐसे कि अगर मेरे पास कृष्ण का अगर कोई विग्रह होता तो मैं उसकी पूजा कर सकता था। शालिग्राम शिला है लेकिन कृष्ण का मूर्ति नहीं है, ऐसा निरंतर सोचते रहते थे। उनका नीचे कोई निवास स्थान नहीं था, एक कपड़े में अंदर सारे सालग्राम बांध करके घूमते रहते थे, इसी तरह से रहते थे। लेकिन बाद में एक दिन जब ये बात हुई तो एक रात को हल्का सा सोए, सो करके उठ करके अर्ली मॉर्निंग यमुना स्नान करने गए। यमुना स्नान करके जब आए, उन्होंने खोल के देखा अपना शालग्राम शिलाओं में, तो वहां पर एक कृष्ण का विग्रह भी था। और ये कृष्ण का विग्रह देखकर वो जमीन पे लोटपोट होने लगे, और ये स्वयं राधा रमन देव रमन जी स्वयं प्रकट हुए थे वहां पर। और ये विग्रह अभी किसी ने बनाया नहीं है, ऐसे कोई शिल्पी ने नहीं बनाया, स्वयंभू है कृष्ण का मूर्ति, और बहुत सुंदर है। हो सकता है कुछ लोग इसको एक्चुअली उनकी आंखें ऊपर लगाई हुई है ना बाहर से, तो आंखें बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए कई बार भक्त लोग इसको समझ नहीं पाते। लेकिन अगर आप बहुत पास से देखोगे तो उस छोटा सा इतना सा विग्रह है, एक फुट इतना है, इससे कम, इतना छोटा विग्रह है, लेकिन उसके नाखून भी है, इतना छोटा सा कृष्ण, दांत भी है उस विग्रह में। ऐसा विग्रह आप देख नहीं पाओगे ऐसे कहीं पर भी, आपके छोटे से विग्रह में वो आप गोविंदा का विग्रह आप उसको देखो, उसमें नाखून ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, नाखून भी है, लेकिन राधा रमन के विग्रह में सब कुछ है, इतना माइक्रो डिटेल्स, क्योंकि वो तो स्वयं वो है ना, बहुत सुंदर विग्रह है। एक व्यक्ति ने एक बच्चे ने गलती से खेल में एक सुई जब राधा रमन के इस कान में डाल दी थी गलती से, और इधर से बाहर निकल गई सुई, तो वो पूरा जो सुई था वो पूरा खून वाला हो गया। लेकिन उसी दिन उस बच्चे का मृत्यु भी हो गया, क्योंकि उसने ब्रिटिश का अपराध किया था, उसी दिन उसका ब्लड वॉमिटिंग हो गया, वो मर गया वो। लेकिन राधा रमन का जो मूर्ति है वो स्वयं राधा कृष्ण, राधा रानी स्वयं, कृष्ण स्वयं है वहां, वो मूर्ति नहीं है। और कभी कभी यही रमन जी का जो विग्रह है, गोपाल भट्ट गोस्वामी को चैतन्य का रूप में दर्शन देते थे, वही मूर्ति से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते थे और उनको दर्शन देते थे, तो देयर इज वही चैतन्य महाप्रभु है। राधा रमन जो मूर्ति है रमन देव, वही वास्तव में चैतन्य महाप्रभु है, गोपाल भट्ट गोस्वामी को कृपा करते थे। सो आज उनका आविर्भाव दिवस है, रामचंद्र कविराज का तिरुभाव है, आप गाते हो रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, रामचंद्र उनके समकालीन भक्त थे। और इस तरह से एक्चुअली हमारे वैष्णव आचार्य जो है उनके जीवन से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि भक्ति जो है वो फुल टाइम बिजनेस है, पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, और इसमें गंभीर भक्त को अधिक कृपा प्राप्त होती है। हर एक वस्तु में, आप मटेरियल वर्ल्ड में भी देखते हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी यही होता है। अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। ये हमारे शिव गोस्वामी है, वो बहुत विद्वान लोग थे और उन्होंने पूरा समर्पण दिया। वे भगवद गीता में हम पढ़ रहे थे कुछ दिनों पहले कि आपको अगर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसका क्वालिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो क्वालिफिकेशन तो एक ही है, आप कितने लालायित हो कृष्ण भक्ति के लिए, आप कितने विद्वान हो, पंडित हो, बुद्धिशाली हो, सूरत हो, बदसूरत हो, धनवान हो, गरीब हो, ये सब चीज का कोई लेना देना नहीं। अगर आप चाहते हो कि कृष्ण आप पर कृपा करे तो कृष्ण आपका समर्पण देखना चाहते हैं, आप कितना समर्पित हो भगवान के आदेशों के प्रति, भगवान के भक्तों के आदेशों के प्रति, जैसे अध्यात्मिक गुरु आपके आदेश देते हैं, और आपका कितना इच्छा है, आप क्या चाहते हो, आप अपने जीवन में क्या चाहते हो, ये चीज भगवान बहुत ध्यान से देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे हमारा तो लाइफ ऐसे चल ही रहा है ना प्रभु जी, तो भगवान भी बोलेंगे हाँ ठीक है तो चलते रहने दो, क्या प्रॉब्लम है, तुम संतुष्ट हो तो मैं भी संतुष्ट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कृष्ण कृपालु है, इसलिए कई बार अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने भक्तों से बुलवाते हैं कि तुम ये करो तुम वो करो, इससे तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा लाभ होगा। जैसे अभी हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे थे कि किस तरह से जो भक्त दया करते हैं नए भक्तों के ऊपर, आज मैं सोच रहा था चर्चा करेंगे कि जो हमसे नए जुड़ने वाले भक्त हैं या फिर छोटे हैं, उनसे किस प्रकार से व्यवहार हमारा होना चाहिए। तो ऐसे तो कई एग्जाम्पल है, लेकिन उन पर कृपा करना चाहिए। कई बार हम लोग एक दूसरे को प्रभु कहते हैं, है ना, तो प्रभु का अर्थ ये नहीं होता है कि, प्रभु का वास्तविक अर्थ ये है कि आप मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूं। लेकिन आप अगर समझ लो किसी और को प्रभु कहते हो या कोई आपको प्रभु कहता है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप फिर प्रभु बन जाते हो। भक्तों का ये भाव नहीं है, कोई आपको प्रभु कहता है तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि अब तो मैं इसका स्वामी बन गया, अब तो मैं मालिक हूं इसका, अब तो तुम ये दंडवत कर सकते हो, अब मुझे प्रणाम कर सकते हो। तो प्रभु संबोधन के रूप में है और भाव बोलने वाले के लिए इम्पोर्टेंट है, सुनने वाले के लिए नहीं, बोलने वाले के लिए भाव है कि मैं दास हूं आप स्वामी हो। तो कुछ लोग कई बार गलती से क्या करते हैं, अगर जब आप उनको फोन करके, फोन पे भी गलती हो जाती है, आप पूछते हो ना उनसे कौन बोल रहे, तो वो ये नहीं कहेंगे कि मैं ये बोल रहा हूँ, मैं हमारे स्वयं सो प्रभु बोल रहा हूँ, है ना। सुनने में कई बार ऐसा होता है क्योंकि उनको उनको बेचारे को पता नहीं है कि ये संबोधन तुम्हारे लिए नहीं है, वो बोलने वाले के लिए, तुम तो दास ही हो और दास ही बने रहो, अपने आप को प्रभु मत बताओ, अपने आप को दास बताओ। इसलिए कभी ये अपना अपने नाम के साथ खुद ना खुद प्रभु ऐड नहीं करना चाहिए, जिसमें मेरा ही नाम लिखता हूँ और उसमें मेरे ही नाम के आगे मैं प्रभु लिखता हूँ, ये नहीं हो सकता है। जब तुम्हारी दीक्षा हुई थी तब तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हें क्या प्रभु का नाम से दीक्षा दिया था कि स्वयं सो प्रभु अधिकारी, हाँ दास अधिकारी दिया था ना, ये प्रभु अधिकारी नहीं दिया था। तो इसलिए सुनने वाले के लिए ये सावधानी रखनी चाहिए। आजकल तो लोग प्रभु बुलवाते हैं, हमें प्रभु बोलो, बुलवाते हैं, कई बार देखा है हमने ऐसा, ध्यान रखना पड़ता है, विदेशों में जाते ध्यान रखना पड़ता है इनको प्रभु बोलने का, तो ध्यान रखना पड़ता है, तो पहले से कोई बता देता है आपको कि इनको प्रभु बोलना, हाँ ठीक है इनको प्रभु बोलेंगे। सो ये दुर्भाग्य है हमारा। एक्चुअली कुछ ऐसे भक्त है भी कि जो भविष्य के लोगों से इस्कॉन की रक्षा हो जाए, इसके कारण आज ये दोष अपने सिर पे उठाने के लिए तैयार है। तो एक रूप से देखा जाए तो भाव यही समझना चाहिए हमें इसके पीछे कि प्रभु शब्द जो है उसका संबोधन प्रभुपाद ने कहा था, ये एक जगह पर कि somebody is calling you प्रभु, you should not become प्रभु and treat people as servant, you also remain servant। एक बार ऐसा हुआ था कि एक भक्त था, उसने अपना पर्सनल शरण रखा था प्रभुपाद की उपस्थिति में, तो प्रभुपाद ने वहां के लीडर को बुलाया और कहा कि ये फलाना जो डिवोटी है उन्होंने शरण क्यों रखा है, तो फिर प्रभुपाद ने कहा, ये 1974 में हुआ था, और प्रभुपाद ने फिर उनको कहा कि गुरु भाई या गुरु बहन या फिर कोई भी समकक्षा के जो भक्त, समकक्ष जो भक्त होते हैं, वो हमारी सेवा करने, हम सेवा करें उनकी, इसके लिए होते हैं, उनकी सेवा लेने के लिए नहीं होते हैं। ऐसा नहीं सोचे कि अभी ये जो मेरा गुरु भाई है ना, तो मैं उसको दे दूंगा भाई तो मेरा सेवा करो, ये इसके लिए नहीं होते। जो गुरु बंधु, गुरु बहन या फिर उसी समकक्ष जो भक्त होते हैं, वो उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। जब तक गुरु आपको आदेश ना दे या परमिशन ना दे, तब तक आप किसी भी भक्त को अपने सर्वंट के रूप में नहीं रख सकते या नहीं रखना चाहिए। अगर कोई डिवोटी है और वो सेवा करना चाहता है नियमित रूप से, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि ये भक्त मेरी सेवा करना चाहता है, गुरु महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये भाव हमेशा रखना चाहिए। सो अपने भक्त, गुरु भाई या उस प्रकार के जो भक्त होते हैं, उनको प्रभु कहना चाहिए। इसका उद्देश्य यही है कि हम स्वामित्व का भाव ना रख करके दासत्व का भाव रखें। एक्चुअली हमारे भक्तों में ये देखा जाता है, हम सब में देखते हैं हम, कि भक्त लोग जो होते हैं वो ये विनम्रता को अनुकूल करने में भी स्ट्रगल करते हैं। ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये हम सब में डिप रूटेड है कि हम विनम्र नहीं बन सकते। कोई हमें गाइड करे और मैं उनको फॉलो करूं, क्या मेरे में अपने में खुद में बुद्धि नहीं है? ये सोचते हैं, मुझ में अपने में बुद्धि नहीं है कि वो जो कहेंगे जो वो मुझे कर रहे हैं, तो इसलिए हम दुखी होते हैं। टकरा हमारा, क्योंकि हमारा ईगो इतना बड़ा होता है कि हम किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है, और हम सोचते हैं कि हमें झुकाएगा कौन। हाँ, लेकिन वास्तव में भगवान के भक्तों के सामने और भगवान के सामने झुकने में तुम्हारा लाभ होता है। इसमें कई बार भक्त लोग क्या करते हैं, वो केवल उतना ही सुनते हैं जितना उनको पसंद आता है, और वो सारी बात को नहीं सुनते कि जो उनको नहीं अच्छी लगती है। कई बार ऐसा देखा जाता है, पूछता है जोर जोर से बातें कर रहे हैं, ठीक है, कांट से एनीथिंग, बंद कर दो,
दरवाजा
लॉक कर दो। सो ये भक्तों के बीच में देखा, ये आपने नोटिस किया है ना, कई बार गाइडेंस हम लेंगे, पूरा समर्पण भाव, दो हाथ माथा सब कुछ दंडवत करेंगे, सब करेंगे, लेकिन जो भी हमें बताया जाएगा गाइडेंस के रूप में, उसमें से हम वही चीज देंगे कि जो मुझे ठीक लगता है। एक भक्त ने मुझे बताया था कि प्रभु मैं सुनता हूँ सबकी, करता हूँ मन की, सुनता हूँ सबका, ये आपका भी सुनता हूँ, इसका भी सुनता हूँ, उसका भी, सबका सुनता हूँ, पूरा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं फिर खुद सोचता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर मैं करता हूँ। अब फंसेगा, मैं बाद में उसको कहा कि मरेगा ऐसे, तो अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा आगे बढ़ नहीं पाओगे। लेकिन भाई अपने पास भी कुछ तो बुद्धि है ना, हम भी तो सोच सकते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। यहाँ पर अटक जाते गाड़ी, इधर गाड़ी अटक जाती है, क्योंकि मैं हम खुद अपनी तुच्छ बुद्धि से सोचने का प्रयास करते हैं। वैष्णव और वरिष्ठ भक्त या गुरुजनों की इंस्ट्रक्शन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना हम अपने आप को देते हैं, और परिणाम यह आता है कि हम यहाँ पर अटक जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि जब समर्पण करना हो, अगर आपको किसी को प्रश्न पूछना, गाइडेंस लेने जाते हो, तो पूरा गाइडेंस लेना चाहिए। आधा गाइडेंस लेने से आपका तो लाभ आधा ही होगा या फिर नहीं होगा, और सामने वाले भक्त का टाइम वेस्ट भी होगा। और जब उस भक्त को पता पड़ेगा कि आप उनकी बात आधी मानते हो आधी नहीं मानते, तो उसके मन में कोई मोटिवेशन नहीं होता है बोलने का, वो आपको गाइड करने के लिए इतना उत्साही नहीं होता है, और ठीक है ऐसे भी ये क्या सुनता है हमारी। तो इस प्रकार से नुकसान किसका होता है? हमारा होता है। और फिर हम ऐसे हर जगह ऐसा करते हैं तो सारे भक्त हमारे साथ फिर इसी प्रकार से व्यवहार करते। तो हम तो भक्तों की संगति का लाभ उठाने निकले थे, लेकिन परिणाम आया कि हमें अब कोई लाभ दे ही नहीं रहा है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम भक्तों की संगति कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से अगर हमारा व्यवहार रहेगा, और एक जस्ट वन मोर पैराग्राफ वी स्टॉप हियर बिकॉज वी हैव टू टेक एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। एक बार एक भक्त दो गुरु भाई आपस में झगड़ रहे थे। जैसे प्रभुपाद को पता पड़ा कि इसमें से एक था जो लीडर जैसा था और दूसरा था वो सबॉर्डिनेट था, तो आपस में झगड़ रहे थे। तो प्रभुपाद को बड़ा अजीब लगा ये। प्रभुपाद ने कहा कि तुम तो लीडर जैसे भक्त हो, इतने पुराने भक्त हो, सो तुम्हें तो गंभीर रहना चाहिए। इस प्रभुपाद का कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप लीडरशिप की सेवा कर रहे हो, आप लीडर, तो आपको झगड़ा शोभा नहीं देता। अगर आप किसी झगड़े में फंसते हो या आप ऊंची आवाज से बात करते हो या फिर आप किसी के साथ क्वारलिंग में फंस जाओ, तो ये बहुत बहुत बुरा हमारे लिए माना जाता। लीडर्स कभी झगड़े में फंसते नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। जब आपको लगता है कि यहाँ झगड़ा हो सकता है तो उसको पहले से सॉल्व करना सीखो। झगड़ा हो है वो तब तक की नौबत मत देखो। और लीडर्स को चाहिए कि उसको क्रोध को तो वश में रखना चाहिए। तो प्रभुपाद ने फिर उनको कहा कि आपको और गंभीर और जिम्मेदार होना चाहिए। इसलिए जो लीडरशिप का सेवा कर रहे हैं वो प्रवोक नहीं हो सकते। अगर आप लीडरशिप आपके साथ बहुत सारे भक्त जुड़े हुए आपसे, तो आपको प्रवोक नहीं हो सकते, उत्तेजित नहीं हो सकते। अगर कोई भक्त कोई गलती कर रहा है तो आप उसको अपनी बुद्धि से समझा करके, प्रेम से समझा करके कोई तरीका उपयोग करो और उस पर कृपा भी करो, लेकिन उसके सामने गुस्सा मत दिखाओ। या क्योंकि तो आप फेल हो जाते हो जब आप गुस्सा दिखाते हो, उत्तेजित हो गए हो और आप झगड़ा कर देते हो, तो आप फेल, आप लीडरशिप नहीं कर पाओगे, है ना? आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं होते हो फिर लीडरशिप के लिए। तो इसलिए ये बड़ा आवश्यक होता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से पालन करें। तो जैसे जैसे भक्त जिस प्रकार के होते हैं, उन सबको उस भाव से सहायता करनी चाहिए। विशेष करके जो नए भक्त होते हैं वो छोटे बच्चे जैसे होते हैं, इसलिए उन पर कृपा करनी पड़ती है और उनकी गलतियों को क्षमा करना पड़ता है। इसलिए उनकी गलतियों पे जैसे बड़ा भाई गुस्सा नहीं करता, इस तरह से आप जो भक्त ये कार्य करते हैं सेवा का, प्रचार का, तो उनको कृपा बनाए रखनी पड़ती है सबके ऊपर, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। सो देर आर फ्यू थिंग्स लाइक दिस। नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट कुछ इनोसेंट डिवोटीज के विषय में और कुछ उसी प्रकार के लोगों के लिए। हरे कृष्णा। वी स्टॉप, एनी क्वेश्चन?